ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत धन्यवाद है कि आपके बिजी हफ्ते भर के काम के बावजूद भी आप रविवार को सवेरे यहाँ पर उपस्थित रहे। आज हम इस कार्यक्रम में श्री जमुना देवी, जमुना नदी के आंदोलन के विषय में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप सब जानते हैं कि आज जमुना आंदोलन का आखिरी दिन है और आज के तारीख में सभी दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में आज सब लोग हथिनी कुंड में पहुंचेंगे, जहां पर से ये जमुना देवी को पूरी तरह से हरियाणा भेज दिया गया है, जहां से उसका प्रवाह खंडित करके पूर्णता से उसको चेंज करके बदल करके पूरी तरह से 100% हरियाणा भेज दिया गया है। और वहाँ से जो ब्रज में जमुना जी का पात्र है, रास्ता है जहाँ से जमुना जी श्री वृंदावन धाम पहुँचती है, वहाँ पर केवल मलमूत्र डाला जा रहा है। अनेक राज्यों का मलमूत्र जो है वो प्रवाहित किया जा रहा है। तो ये सब बातें बहुत दर्दनाक है, बहुत वेदना देने वाली है। इसलिए पहले हम जमुना जी का थोड़ा गौरव बताएंगे आपको। श्री जमुना देवी कौन है और क्यों हमें उनको उनके लिए यहाँ पर मिलना चाहिए? मुंबई में बैठकर इतवार के सवेरे अच्छी तरह सुख की चैन की नींद सोने के बदले में हमें यहाँ पर क्यों आना चाहिए? इसका कारण यह है कि मैं आपको अभी संक्षेप में बताऊँगा सब कहानियाँ। श्री गोलोक धाम में जब राधा और कृष्ण और गोपियों ने मिलकर रास नृत्य किया तो उनके शरीर से दिव्य श्वेत जल निकला, बहुत दिव्य जल, जिसको हम यहाँ पर विकृत भाव में उसको पसीना कहते हैं। पसीना बदबूदार होता है लेकिन श्वेत जल दिव्य होता है। और श्वेत से अनेक सुंदर भावनाएं, आध्यात्मिक भावनाएं जागृत होती है। तो ऐसा दिव्य श्वेत उनके प्रेम के वजह से प्रकट हुआ और एकत्र हो गया। तो राधा रानी उस जल को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि इस जल के जलाशय को नदी का रूप देना चाहिए। तो उस तरह से वहाँ पर श्री जमुना देवी का अवतरण हुआ और वो प्रवाहित हो गई और दिव्य लोक में, गौलोक में जमुना जी प्रकट हो गई। फिर जब पृथ्वी पर अवतार लेने का समय आया, बड़ी लंबी कहानी गर्ग संहिता में आती है, भगवान स्वयं पृथ्वी देवी को बता रहे हैं कि हम आने वाले हैं और आएंगे, तो राधा रानी बेहोश हो गई ये सुनकर कि अभी हमको कृष्ण का विरह होगा। तो राधा रानी को होश में लाया गया। ये सब गौलोक की बातें हैं, पृथ्वी की और यहाँ की नहीं है। गौलोक में राधा रानी बेहोश हो गई ये सोचकर कि हमें भगवान का संग छूटेगा अभी। तो भगवान ने उनको समझाया कि आप क्यों रो रही हैं, हम तो आपको लेके जाने वाले हैं। वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर जमुना जी नहीं है, जहाँ वृंदावन धाम नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वहाँ पर हम नहीं आ सकते। आप चाहे तो हमको ले जाने की इच्छा रख सकते हो लेकिन हम नहीं आ सकते। तो भगवान ने कहा कि आपकी इच्छा को जानते हुए गौलोक धाम का 84 कोस का हिस्सा गोवर्धन और जमुना जी के साथ हमने पृथ्वी पर भेज दिया है। भौम वृंदावन जो भूमि पर प्रकट होने वाला है, ऐसे वृंदावन को भौम वृंदावन कहते हैं। उसमें आपके कहने से पहले से ही जमुना जी और गोवर्धन वृंदावन के साथ प्रकट हो गया है। तब जाकर राधा रानी ने उनके साथ में अवतार लेने का मान लिया कि मैं आएंगे, हम आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यमुना जी कितना अविभाज्य अंग है ब्रज का। वृंदावन धाम, गोवर्धन और यमुना जी, ये तीनों ब्रज का एक अविभाज्य अंग है। जैसे हमारे शरीर में आंखें और कान होते हैं, हम कह सकते नहीं कि हमको कान के बिना चल जाएगा, आंखों से काम चला लेंगे, या आंखें नहीं चलेगा कान से काम चला लेंगे, ऐसा नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है उसमें। उसी तरह से वृंदावन धाम का स्थिति है। तो उसके बाद में जब पृथ्वी पर आने का मार्ग जब हम चुनते हैं कि भगवान ने भी अवतार लिया देवकी और वसुदेव के गर्भ से, वो एक मार्ग है उनका अवतार लेने का। तो इस तरह से सूर्य देव का विवाह उषा देवी के साथ में हुआ, और जब उनका प्रथम संबंध समय आया तो उषा देवी उनके तेज से बड़ी भयभीत हो गई, इतना हरा तेज पति देव का, तो भयभीत हो गई वो। तो सूर्य देव ने कहा कि अभी इस संबंध से जो पुत्र होगा वो उसके कारण सब लोग भयभीत होंगे, सब विश्व जो है जितने जीव होंगे वो उसके द्वारा भयभीत होंगे, वो है यमराज। तो उषा देवी को बड़ा दुख हुआ कि पुत्र तो महान है लेकिन उसको लोग डरने वाले देख के। अगली बार जो संबंध हुआ तो बड़े प्रेम से सेवा किया पति का, पति को प्रसन्न कर दिया आनंद से ही। तो पति ने कहा सूर्यदेव ने कि अभी जो कन्या होगी वो नदी के रूप में होगी, और इसके जल में जो स्नान करेगा वो पहले वाले पुत्र के भय से मुक्त हो जाएगा। तो वो है यमी, यानी यमुना देवी। हाँ, इतना बड़ा काम है, सोच सकते हैं आप, किसी को किस चीज़ से भय है और किसी कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो सब भय से आपको मुक्त करेगा, कितनी महान बात है, कितनी बड़ी सेवा है ये। तो यमुना देवी का ऐसा महात्म्य है, अनंत महात्म्य है उसका, लेकिन अनेक महात्म्य ऐसा है कि जो व्यक्ति यमुना जल में स्नान करता है वो यमराज के भय से, जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, दोबारा उसको उस दुनिया में आने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कहा गया है कि यमुना जी को केवल आप प्रेम से निहारेंगे, ओनली यू ग्लैंस एट यमुना विथ लव फ्रॉम डिस्टेंस। हाँ, अगर आप यमुना जी के बारे में यहाँ बैठकर केवल सोचेंगे, कोई याद करेंगे, मन में दर्शन करेंगे, जब कभी किया होगा पहले, तो केवल ऐसा करने से भी आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। मथुरा मंडल हम जाएंगे, वृंदावन धाम जाएंगे, ऐसा विचार भी करेंगे ना, उससे भी जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो छूट जाता है, ऐसे पद्म पुराण में लिखा है। ओनली बाई थिंकिंग दैट आई विल गो टू वृंदावन, आई वॉन्ट टू गो टू वृंदावन, इतना सोचने पर भी आपको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति हो जाती है, इतना ये शक्तिशाली धाम है। हम लोग कोई कर्मकांड धाम की बात नहीं कर रहे हैं कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको 8 पुत्र होंगे, और यहाँ जाएंगे धन दौलत बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, घर क्लेश नष्ट हो जाएगा, ऐसे धाम की बात नहीं कर रहे हैं हम। उस धाम की बात कर रहे हैं जिसको सोचने से भी हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसी है यमुना देवी जो है वो वृंदावन धाम, वृंदावन जो 137 वनों में से सबसे प्रिय वन है भगवान का। हाँ, 137 है, उसके बाद में 108 है भगवान को अति प्रिय है, उसके बाद में उसमें से 12 भगवान को बहुत प्रिय है, और उन 12 अति प्रिय वनों में से सर्वश्रेष्ठ प्रिय वन जो है वो वृंदावन है। जिस वृंदावन में यमुना जी और गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, जावट ये सब सम्मिलित है। हाँ, आज का वृंदावन जो है केवल वो मथुरा से 11 किलोमीटर के अंतर में स्थित है, वो ज्योग्राफिकल भौगोलिक वृंदावन है, क्योंकि दिव्य वृंदावन जो है एक्चुअली 108 वनों में से एक वन जो है उसमें गोवर्धन, यमुना जी और नंदगांव, बरसाना, जावट ये सब सम्मिलित है। वो 20 कोस का है, 84 कोस में से। तो ये यमुना जी गोवर्धन के तलेटी में बहा करती थी, आज तो वहाँ नहीं है वो, कहीं विस्थापित हो गई है, कहीं डिस्प्लेस हो गई है, कहीं चली गई है, वहाँ से पात्र बदल गया उसका। कृष्ण के समय गोवर्धन के तलेटी मतलब बेस के आसपास यमुना जी बहती थी, और भगवान ने उसके किनारे पे अनंत लीला किया है। हमारे संप्रदाय में, पुष्टिमार्गी संप्रदाय में, निम्बार्की संप्रदाय में, विष्णु स्वामी संप्रदाय में, हर संप्रदाय में यमुना जी का अनंत लीलाएँ हैं। हाँ, यमुना जी किनारा जो है वो अनंत लीलाओं का सली है, पूरा दिन दिन तक बैठेंगे तो भी यमुना जी का लीला जो है वो समाप्त नहीं होगा। भगवान ने यमुना जी के किनारे बैठकर राधा रानी से मुरली बजाना सीखा है, सबसे बड़ी बात तो वही है, जो मुरली पूरे विश्व को मोहित कर देती है, जो सबको पागल बना देती है, सब अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, अपनी बुद्धि का संतुलन खो बैठते हैं, वो मुरली जो है भगवान ने राधा रानी से जमुना किनारे में कदम के तब पीछे नीचे बैठकर सुनिए, हाँ कितना दिव्य बात है ये। नृत्य भगवान ने सिखाया, वो तो नटवर हैं, जब नाचते हैं तो दो दो मील तक उनके पैर के घूर उड़ जाते हैं। यशोदा माई को बहुत समस्या होती है कि भाई कैसे कस के बांधूँ, कितने लौट के लेके आएगा, तीन तो भेजे थे बांध के, एक ही लौट के लेके आए। ऐसे नृत्य जो भगवान करते हैं नटराज श्री वृंदावन नटवर, उसको नृत्य के जो पद है पद लालित्य जो है वो राधा रानी ने जमुना किनारे ही सिखाया है। तो हमारे भक्ति के मार्ग में श्री जमुना जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, श्री जमुना जी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राधा रानी जब कहती है कि मैं वृंदावन में जमुना जी गोवर्धन होगा तो ही आऊँगी, इसका मतलब जमुना जी नहीं रहूँगी तो नहीं रहूँगी, इसका मतलब होता है ना, इस लॉजिकल कोरोलरी दैट इफ शी इज नॉट देयर आई विल नॉट बी देयर। तो भय ये है कि जमुना जी अगर वहाँ से चली जाएंगी या कोई राक्षस लोग उसको प्रभावित करेंगे और कई जगह पर, तो राधा रानी फिर ब्रज छोड़ के चली जाएगी। और ब्रज में लोग किसको पुकारते हैं, कृष्ण को पुकारते हैं कि बलराम को पुकारते हैं? सब लोग राधे राधे बोलते हैं। ब्रज का जो आधिपत्य है पूरा अधिष्ठान है वो राधा रानी का है, सब जगह राधा रानी, दाल दाल पर, पत्ते पत्ते पर, कदम कदम पर, ब्रज के कण कण पर राधे का नाम लिखा हुआ है, वो अधिष्ठात्री है। तो उसका होना जरूरी है, और वो नहीं रहेंगे हमारी भक्ति कैसी होगी, हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी, प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, कृपा कहाँ से मिलेगी? हाँ, तो ये जमुना देवी जो है अभी उस समय तो एक कालिया था, और उसने जमुना जी का एक हिस्सा था वृंदावन का वो विष से भर दिया था, काली दह था वो, मतलब एक लेक था सरोवर, उसने केवल एक ही भाग जो है दूषित कर दिया था। लेकिन हमारे कलियुग के राक्षस इतने महान हैं, कलियुग के कालिया, कि पूरी जमुना जी को उन्होंने केवल मलमूत्र से भर दिया, कितनी दुख की बात है ये। हमारा देश भी, हमारा जो गवर्नमेंट है, हम लोग सब लोग जो हैं क्या बताएं, अभी सवेरे सवेरे गाली देनी नहीं चाहिए सब प्रभात के समय पर, लेकिन इतना हमारा शासन गिरा हुआ है, इतना पत्थर बन चुका है, इतना इंद्रियहीन बन चुका है कि उनको कोई अपने देश के बारे में कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे एक नदी है उधर इंग्लैंड में थेम्स नाम की, मैं गया था उधर, इतना संभाल के रखते हैं उसको, आप किनारे में बैठेंगे ना उसके तो पूरा तल का मछली भी देख सकते हैं उसके अंदर, इतना स्वच्छ जल है उसका, कॉन्स्टेंटली साफ करते रहते हैं उसको, बोटिंग भी करने देते नहीं किसी को, क्योंकि उनके देश की एक ही नदी है, वो इतना संभाल के रखते हैं। कितना रूल है, एक कपड़े का कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा उसके ऊपर, आपको फाइन लगेगा उसके ऊपर। सब लोग आदर से नदी के साथ अपने आप को पेश करते हैं, और इंग्लैंड उधर अमेरिका में कोई शायद और एक नदी है, और उधर इजिप्ट में नाइल नदी है, इतना प्रेम से रखते हैं उनको वो। हमारे देश में अनंत नदियाँ हैं और कोई किसी को पूछता नहीं है, नो बड़ी केयर्स फॉर देम। नदी मतलब अपना कचरा, प्लास्टिक, घर का जितना भी कचरा है वो सब फेंकने के लिए बना हुआ साधन है, ऐसे लोगों को लगता है। और हम लोग इतने बड़े भाग्य से, बड़े गर्व से कहते हैं जन गण मन अधिनायक जय हे, हाँ विंध्य हिमाचल गंगा यमुना उत्कल जल तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। इतना हमारी भूमि है कि ये जीव को दिव्य आशीर्वाद दे सकती है, तब शुभ नामे तब आशीष जागे। उसमें ये गंगा जमुना हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, वो राष्ट्रगीत के भी अंदर उसके उसको हमने डाल दिया है, लेकिन राष्ट्रगीत में सीमित रखा है उसको, तो उधर ही रहो, राष्ट्रगीत के बाहर मत निकलो, ज़्यादा जिंदगी में हमारे मत आओ, हमारे ज़िंदगी में टाइम नहीं हमको तुमको ज़िंदगी में विचार करने के लिए उसका। इसलिए कोई गवर्नमेंट उठती है और हमारे, अच्छा एक बात बताना भूल गया आपको मैं, ये सब युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है, ये सब लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? क्योंकि ब्रज का जमुना जी जब जमुनोत्री से आती है, कालिंद पर्वत से आती है, इसलिए उसका नाम कालिंदी भी है, और भगवान के रंग की है वो, सांवले रंग की है, और इतना बड़ा महत्व है उसका कि भगवान ने जन्म लिया, और पहले स्नान कहाँ किया उन्होंने, देवकी के पास किया क्या? जन्म होते ही कुछ ही मिनटों में जमुना जी में कूद पड़े वो, जमुना जी में, जमुना जी ऊपर ऊपर आ रही थी तो भगवान जमुना जी में कूद पड़े, फिर जमुना जी थोड़ा नीचे आ गई, और वो कोयले कहाँ गया बारक मेरा, ढूंढ रहे थे तो तुरंत मिल गया उनको। सबसे पहले भगवान ने दो मिनट के अंदर जो भी प्रवचन किया अपने माता पिता को, उसके बाद जो निकले सबसे पहले स्नान दर्शन जमुना जी का किया, अपने चरणों का अमृत जो है वो जमुना जी को पान कराया उन्होंने। जमुना जी तो भगवान के आने से ही तुरंत चरणामृत बन गई, और उसके बाद में तो अनंत बार जमुना जी में उन्होंने कूदा, गेंद खेला और क्या क्या किया उन्होंने। कालिया के समय भी कूद लगाई उसके अंदर, अनंत बार कूद लगाई, अनंत बार खेल खेला उसके अंदर। जमुना जी किनारे ही पूरा गौचारण किया, भोजन किया, कितनी लीलाएँ हैं, अनंत लीलाएँ जमुना किनारे उन्होंने किया है। तो महात्म्य ये है उसका कि जमुना जी जब जमुनोत्री से बहती है तो जब तक वो ब्रज में नहीं पहुंचती है तब तक उसका महात्म्य यह है कि उसके जल में स्नान करने से आपके कर्म नष्ट हो जाएंगे, केवल पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब वो ब्रज में प्रवेश करती है तो पाप के साथ पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। एक बार प्रभुपाद जी ने बोला कि जमुना जी पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करती है, तो कुछ लोग जल में चले गए तो बाहर भाग के आ गए, बोले हमको पुण्य नहीं नष्ट करना है। बोला ऑलरेडी गए थे बहुत प्रेरणा से, सुना कि पाप और पुण्य दोनों नष्ट होते हैं तो भाग के बाहर आ गए। तो प्रभुपाद जी समझाया पुण्य तो पाप से भी खराब चीज़ है, क्योंकि पुण्य आपको अच्छे लगते हैं, उसके फल के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। पाप तो आपको अच्छे लगते नहीं है, मतलब पाप का फल आप चाहते हैं कि पाप का फल को छोड़ दे करके, लेकिन पुण्य हमको चाहे लगते हैं अच्छे हैं, लाओ उसको, लेकिन पुण्य हमको यहाँ से भी खराब कंडीशन में स्वर्ग लोक में डाल देते हैं, जहाँ पर हमको याद भी नहीं कि हम भौतिक जगत में एंजॉय करने के मूड में रहते हैं। क्यों? पुण्य फल के रूप में। तो ब्रज में वो पुण्य को भी नष्ट कर देती है, हमको एकदम फ्री कर देती है। और यहीं उसका महात्म्य समाप्त नहीं होता है ब्रज का। ब्रज में जब वो प्रवेश करती है तो वो कृष्ण प्रेम को देती है, ये उसका विशेष महात्म्य है, जो कृष्ण प्रेम वो और जाई जगह पर देती नहीं है। ब्रज के अंदर प्रवेश करती है तब वो कृष्ण प्रेम देती है, और वो वृंदावन धाम इतना प्रिय है कि वो काज, अगर वृंदावन धाम आँख है तो जमुना जी काजल की तरह है, वो ऐसे पूरा उसको कवर करके निकल जाती है। जैसे हम बालक को काजल लगाते हैं ना, ऊपर से लगाते हैं नीचे भी लगाते हैं, पूरा सर्कल कर देते हैं, उस तरह से वो एक तरफ से आती है पूरे वृंदावन को ऐसे कवर करके, पूरा परिक्रमा देकर वो चली जाती है आगे अपने परिक्रमा रास्ता में। तो हम ब्रज में क्यों चाहते हैं उसको? क्योंकि ब्रज में यमुना देवी न केवल यमराज के भय से बचाती है, न केवल पाप से बचाती है, न केवल पुण्य से बचाती है, बल्कि श्री कृष्ण प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है उसको वो देती है। वो कृष्ण की पंचम पत्नी भी है, पटरानियों में से आठ पटरानी जो है उसके पांचवी पत्नी जो है, एकमेव पत्नी भगवान की ब्रजवासी है वो यमुना देवी है। बाकी सब भगवान की पत्नियाँ शहर वाली हैं, कोई नागपुर वाली है, कोई इधर वाली है, कोई उधर वाली है, कोई साउथ इंडियन है। एक पत्नी भगवान की ब्रजवासी है वो यमुना देवी है। विशाखा देवी का विस्तार है वो, राधा रानी का अवतार, राधा रानी का भी अंश है वो, सारे प्रेम की शक्तियों से परिपूर्ण है वो। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ब्रज में आने के पहले से उसको हरियाणा में घुसा दिया है, और 30% जल उसका डालते हैं किधर, इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर मशीनरी बनती है, वहाँ पर शुद्ध जल का क्या काम है उधर। पॉलिटिक्स कितना खराब होता है, हाँ भगवान पता नहीं उनके लिए अलग नरक बनाएंगे अभी सेपरेट, कि इन लोगों को कहाँ डाले, तो बनाया था उसमें इनको दंड बराबर नहीं होगा, अलग से नरक बनाएंगे उनके लिए खास, कि जो न केवल लोगों को लूटते हैं, न लोगों को कष्ट देते हैं, लेकिन दिव्य साधन जो है उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे उनका कोई वास्ता नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल लाइफ, लेकिन तुम्हारे हमारे आध्यात्मिक साधन को नष्ट कर देते हो, उसके नींव को नष्ट कर देते हैं, उसके बेस को नष्ट कर देते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि उन्होंने दो पाप किए हैं, एक पाप तो जमुना जी को ब्रज में आने से रोक लिया है, जो जमुना जी का अंतिम गंतव्य स्थान है, जिसके लिए वो उत्पन्न हुई है, जिसके लिए उसका अवतार है, जिसके लिए उसके अवतार का कारण सार क्या है, उसको ब्रज में आना है, ब्रज में रहना है। वो दैवी ब्रज में थी वो, और वो इस ब्रज में आना चाहती है, इसलिए वो यात्रा करती है यमुनोत्री से। तो इन कालिया नागों ने उसको वहीं से परावृत कर दिया है, तो ब्रज से आने से रोक दिया है। और दूसरी बात यह है कि उनका पात्र जो है वो भी इतना योग्य और इतना पावरफुल है, इस पात्र के जल के, पात्र के रज के स्पर्श से भी आप जन्म मृत्यु से मुक्ति होकर भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकती है। जमुना जी के रज का ये महात्म्य, हमारा जो हॉस्पिस है वृंदावन का, उसको हमने 20-25 फीट तक खोदा, फिर भी मक्खन जैसी मुलायम रज निकली उसमें से। फिर हमको 20-25 फीट के अंदर जाकर एक सीमेंट का प्लिंथ बनाना पड़ा बिल्डिंग बनाने को, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इतनी सुंदर रज। उसको मैंने 3 बोरी निकाल कर रखा हुआ है, कभी किसी के मृत्यु के समय काम आएगी वो, उसके रज के स्पर्श से किसी को गौलोक प्राप्त हो जाएगा। इस भावना से उसको निकाल के रखा है, क्योंकि इतना खुदेगा कौन अभी आगे जाकर, ऐसा उसका महात्म्य है। लेकिन इन्होंने इस दिव्य रज पर ब्रज के रास्ते में और ब्रज के अंदर क्या किया है, मल मूत्र को छोड़ दिया है। ब्रज में हम जाते हैं, हम तो कचरा नहीं करना चाहिए हमारी तरफ से, मल मूत्र तो छोड़ना ही पड़ता है, तो जिएंगे कैसे, स्नान करना ही पड़ता है, शरीर का कचरा भी आता है उसके अंदर, वो तो अपरिहार्य है वो। लेकिन ये लोगों ने पूरा सुवेज जो है मलमूत्र का नाला जो है वो जमुना जी के पात्र में छोड़ दिया है, और पूरे ब्रज के अंदर जमुना जी अभी केवल मलमूत्र है। अब जानते हैं इस बात को कितनी दुख की बात है। एक समय था, अभी 50 साल के पहले भी नहीं, अभी अभी की बात है, मे भी 10 साल के 15 साल के पहले की बात है, अभी भी गोपाल जी जो माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किए थे, जो बहुत समय तक गोवर्धन पे रहे, हाँ आप लोग को इस बात को पता नहीं होगा, फिर औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो फिर उसके भय से उनको नाथद्वार लेके गए वो, और आज भी ओरिजिनल नाथ जी है गोपाल जी नाथद्वार में विराजमान हैं। तो क्योंकि वो ब्रज के ठाकुर हैं इसलिए रोज जमुना जी के जल से उनका अभिषेक होता था यहाँ पर भी, लेकिन जब उनका वहाँ से स्थलांतरित हो गए वो वहाँ पर नाथद्वार में गए, तो यहाँ से रोज सोने के मड़े हुए मटके में से जल भर के हुए नाथद्वार में लेके जाकर उनको अभिषेक करते थे, ये अभी अभी तक की बात है। लेकिन जिस दिन उनको पता चला कि जमुना जी हल है ही नहीं, केवल मलमूत्र है, तो उन्होंने बंद कर दिया उसको डर के मारे, अरे तो मलमूत्र का अभिषेक कैसे करेंगे भगवान को। और ब्रज के अंदर जितने हमारे ठाकुर हैं, 7 देवालय हमारे गौड़ियों के हैं, अनेक देवालय निम्बार्कियों के हैं, अनेक देवालय पुष्टि मार्गियों के हैं, अनेक देवालय विष्णु स्वामी के हैं, वो कई देवालयों में रिवाज था कि रोज जमुना जी में गोसाई लोग 3 बजे जाकर स्नान करते थे और अपने मटके में जल लेके जाकर आचमन करके उसको भगवान को अभिषेक करते थे। सब बंद हो गया, अभी कैसे करेंगे उसको, अरे हमारा वहां पर यात्रा जाना बंद हो गया, वो शर्म आती है उनको यात्रा लेके जाने के लिए, क्योंकि हम केशी घाट में बैठेंगे और बड़ी सुंदर कथा करेंगे, जमुना जी अरविंद बंधु नंदिनी ये तो सूर्य देव की कन्या है, इतनी पवित्र है, इतनी पावन है, सबके जीवन को धन्य करने वाली है, और नीचे देखेंगे तो क्या मलमूत्र, बाजू में से ही इतना बड़ा पाइप जो है वो 24 घंटा बिना रुके हुए धाड़ 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 गिरते रहता है उसके अंदर, तो कैसे लोगों को कहेंगे कि ये दिव्य जमुना है जिसमें कमल के 1000 पंखुड़ी वाले दिव्य सुनहरे कमल खिला करते थे, जिसमें राधा कृष्ण लीला करते थे। हाँ नरोत्तम दास कहते हैं, नरोत्तम दास को नित्य लीला सुखमोय सदाई स्पुरक मोर मने, तो जमुना जी के अंदर दिव्य सहस्त्र दल के सुनहरे कमल के बीच में राधा कृष्ण रत्न सिंहासन पर विराजमान है, सखियाँ चामन डुला रही है, गीत गा रही है, ये लीला मेरे मन में हमेशा स्फूर्ति रहे, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर गीत गाते हैं, ऐसे सब अच्छा अच्छा वर्णन करेंगे और बाद में बोलेंगे दुर्भाग्य से इसमें अभी मलमूत्र को फेरा है, अभी आचमन करो, तो कैसे आचमन करेंगे लोग, कैसे स्नान करेंगे, अरे हमारे पितरों के अस्थियों को आश्रय देने वाली है वो, अपने पितरों को हम लोग आश्रय देते हैं उसके जल के अंदर, तब जाके गौलोक प्राप्त होता है उनको, वो अंतिम गंतव्य स्थान है, अगर किसी का डेड बॉडी किसी का अंत्यविधि अगर जमुना जी किनारे होता है तो गोसाई लोग कहते हैं कि और कोई स्थान नहीं उसके लिए, तो लास्ट स्टॉप, उसके बाद में सीधा गौलोक ही है, यहाँ पर जो पहुँचता है वो सीधे गौलोक पहुँचता है, इतनी दिव्य जमुना जी, तो कैसे यात्रा लेके जाएंगे, तभी यात्रा ही लेके जाना बंद कर दिया है, कहीं और जाके थोड़ा सा जमुना जी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि हमको शर्म आती है कि कैसे उनको क्या प्रेरणा दे उनको। तो हम चाहते हैं कि यमुना जी ब्रज में लौट के आए, क्योंकि वो खुद यमुना जी उसका खुद का उद्धार जो है, उसका गौलोक गमन का जो मार्ग है वो ब्रज से ही जाता है, जब वे ब्रज से होकर गुजरती है तो गंगा देवी को कहती है, क्योंकि वो सातवें पृथ्वी पर आई थी, और गंगा देवी को कहती है कि अब मैं जा रही हूँ अपने धाम गौलोक, और वहाँ से गौलोक जाती है, ऐसे देवी भागवत में वर्णन आया है, और गंगा जी फिर पाताल लोक में जाती है पाताल गंगा के रूप में, और फिर आगे बढ़ती है। तो इन लोगों ने जमुना जी का स्वयं का जो इच्छा है उसको भी खंडित कर दिया है, अनंत कोटि कोटि भक्तों की जो तमन्ना है उसको भी नष्ट कर दिया है, ऐसे कहते हैं कि 7 करोड़ लोग आज की तारीख में, अभी ज़्यादा हो गए होंगे, 7 करोड़ लोग जो है वो एक साल में ब्रज के अंदर यात्रा करते हैं श्रद्धा से, और कई करोड़ लोग नहीं आ पाते हैं, वहीं से ब्रज को याद करते हैं कि एक बार गए थे, अभी कब जाएंगे पता नहीं। अनंत करोड़ लोगों की श्रद्धा लगी हुई है इसके अंदर। पुष्टि मार्गी लोग इस पर चुनरी ओढ़ते हैं जमुना जी के ऊपर, मतलब प्रेम से। हम बोलते ना, कोई किसी का बड़े आदमी का स्वागत करना है तो उसको हम लोग पटका पहनाते, शाल पहनाते, से जमुना जी को चुनरी उड़ाते यहाँ इस किनारे से उस किनारे तक। इसी जमुना किनारे में बैठकर वराह देव ने हिरण्याक्ष को मारने के बाद में विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट। और वराह देव ने इसी किनारे में आराम करते हुए पृथ्वी देवी को वराह पुराण सुनाया है, जिसमें पूरे ब्रज का महात्म्य है, एक एक घाट का एक एक स्तन का लीला बताया है पृथ्वी देवी को, कितने खंड है उसके अंदर। एक वराह एक बत्रा के अंदर 24 घाट है, इसके अंदर 24 लीलाएं हैं कम से कम। दुर्वासा मुनि की है, प्रहलाद महाराज ने तपस्या किया है, ध्रुव महाराज ने तपस्या किया है, अम्बरीश महाराज ने खड़े होकर इंतजार किया है दुर्वासा मुनि का, ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। सब वन जो है उसके किनारे पे हैं, 5 वन इस तरफ है, 7 वन उस तरफ है। लक्ष्मी देवी ने तपस्या किया है, भगवान ने शादी किया है भांडिर वन में, राधा रानी वहां पर जाकर रोई है, मान सरोवर बना हुआ है जमुना जी के किनारे में, यहाँ वृंदावन है, यहाँ पर क्या क्या नहीं है क्या बताएं। ये सारा नष्ट हो जाएगा अगर जमुना जी नहीं आएगी तो। और हम लोग क्या बताएंगे, अरे भाइयों और बहनों, अरे मेरे प्रिय भक्तों, अभी यहाँ पर जमुना जी भाग करती थी, अभी यहाँ पर बिल्डिंग बन गया है, अभी यहाँ पर मॉल बन गया है, अभी यहाँ पर खेती होती है, बिजनेस होता है, लेकिन ये जगह है ना अभी इधर इधर जमुना जी बहती थी। जैसे हम कहते हैं ना, अरे ये जगह जो है ना, यहाँ पर भगवान का पसीना बहकर प्रस्कंदन सरोवर बन गया था जमुना के किनारे में, मदन मोहन जी के मंदिर के नीचे जब सूर्यों ने आकर भगवान को हीट दिया, कालिया का दमन करने के बाद में भगवान को पसीना आया तो उसका जल वहाँ पर पहाड़ से नीचे उतरा, उसका सरोवर बना प्रस्कंदन सरोवर। हम लोग अभी भक्त क्या बताते हैं, अरे मैंने दर्शन किया है, वो यहाँ पर था, अभी नहीं है। तो वैसे हमारा दुर्दैव ना आए आगे जाकर के, यहाँ पर यमुना जी बहा करती थी, अभी नहीं बह रही है। अभी भी कालिया घाट जो है कहाँ पर है, पूरा रास्ता बना हुआ है, उसके आगे इतनी बड़ी खेती है, और कहीं दूर कालिया के दूर घाट के दूर वहाँ पर यमुना जी बह रही है। ये सब हमारे आँखों के सामने 25 साल में हुआ है, बाकी 25 साल में क्या होगा। अगर हम लोग नहीं जागेंगे भक्त लोग, और नहीं हमारे दिल को तोड़ेंगे, और नहीं दिल में दर्द होगा हमारे, तो क्या होगा आगे जाकर, सोचो आप। हम अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं, हाँ ब्रज के भक्त कहते हैं, कृष्ण के चाहते कहते हैं, उनका नाम जपते हैं, और हमारा हृदय नहीं फटता है ये सब सुनकर, तो कैसी भक्ति हमारी। अपने आप को प्रश्न करना चाहिए कि हम लोग खाली तिलक लगाते हैं और कृष्ण का नाम लेते हैं, वो चाहे जमुना नष्ट हो जाए, गंगा नष्ट हो जाए, हिमालय नष्ट हो जाए, ब्रज नष्ट हो जाए, हमको कोई पड़ी नहीं। हम लोग खाली जाते दर्शन करते हरे कृष्ण करके आ जाते हैं। इतना ही हमारा कर्तव्य बचा है कि जाना चाहिए दर्शन करके, मत्था टेक के बाद में जो कीचड़ है, जो गाय की हत्या हो रही है, जमुना जी नाश हो रहा है, उसमें दुर्लक्ष करके लौट के आना है। हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, हमको खाली यात्रा का आनंद लेके वो लौट के आना है। नहीं, यात्रा का आनंद है तब है जब ब्रज है, जब जमुना है, गोवर्धन है, तब तक यात्रा है। तो यात्रा क्या है, यहीं बैठ के कथा करो, यहीं बैठ के सुनाओ कि गोवर्धन हुआ करता था बढ़िया, ऐसा पर्वत था जिसमें कमल के फूल खिलते थे, हाँ यहीं कर कथा कर सकते हैं। अब ब्रज हमारी कथा से यह प्रकट हो सकता है, यहीं पर मन से आप स्नान कर सकते हो, वहाँ जाने की जरूरत क्या है। अरे जरूरत है, क्योंकि हम लोग कलियुग के पतित जीव हैं, हमारी चेतना दिव्य नहीं है, हम मन से कहीं पर पहुंच नहीं सकते हैं, हमको शरीर से पहुंचना पड़ता है। इसके लिए ब्रज सही होना जरूरी है, और सही होगा तो हमारी अगली पीढ़ी उसकी अगली पीढ़ी जाके जाएगी और बोलेगी यहाँ पर ये लीला हुई थी, हमारे सामने कई स्थान लुप्त हो गए हैं, दुख होता है कि हम आपको वहाँ नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि क्या बताएंगे, यहाँ पर लुक लुक कुंडू हुआ करता था, वहाँ पर भगवान आँख मचोली खिला करते थे, अभी नहीं है, वहाँ पर लौट कट गए। तो हम भक्तों के हृदय का जमीर जो है ना वो जागृत होना चाहिए, तब हमारी भक्ति जो है परिपूर्ण। केवल जमुना जी के लिए कह रहा हूँ मैं, गिरिराज गोवर्धन के लिए, ब्रजभूमि के लिए, गंगा जी के लिए, हिमालय के लिए, हमारा देश का और हमारे संस्कृति का गौरव है ये, हमारे भक्ति के कल्चर का गौरव है। और हम लोग अगर उसका, हमारा हृदय का अगर ठोका जो है वो नहीं चुकता इसके लिए, तो किसका टूट चुकेगा फिर। अश्रद्धा लोगों का टूटेगा, राक्षसी भावना का लोगों का टूटेगा, उनको क्या पड़ी है। अगर भक्त लोगों का हृदय नहीं टूटता है इसके लिए, तो ये सब धाम नष्ट हो जाएंगे। और हम लोग घोर कलियुग को जो है ना वो 10,000 साल के पहले ही खींच के लेके आएंगे। आओ भाई घोर कलियुग, इतना देर क्यों आते हो, जल्दी आ जाओ। हाँ, 10,000 साल का टाइम दिया भगवान ने घोर कलियुग को नहीं आने के लिए, ताकि भाई 10-12 साल के अंदर जो भी नाम लेगा मेरा तुरंत चला जाएगा भगवान के धाम में। तो हम लोग अपनी गतिविधियों से क्या करेंगे, घोर कलयुग आ जाओ जल्दी आ जाओ, सब लोग तड़प रहे हैं आपके लिए सब लोग नरक के रास्ते में यात्रा करेंगे, कोई भगवान के धाम में नहीं जाएगा। तो हमको जगना है, हम लोग नहीं जा पाते दिल्ली को समझो, कोई बात नहीं, आपसे कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कि आप दिल्ली चले जाओ वहाँ पर धूप में खड़े रहो। लाखों लोग चल रहे हैं धूप के अंदर, अपना घरदार अपना बिजनेस अपनी खेती अपनी बाड़ी छोड़ के रस्ते पे चल रहे हैं 10 दिन से, धूप धूप में धूप इतनी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं ना टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेंट में रह रहे हैं, वहाँ पर जो सूखी रोटी मिलती है वो खाते हैं, किसी बाबा ने जय गुरुदेव बाबा ने 20 करोड़ दान दिया है 5 लाख लोगों को भोजन करने के लिए और टेंट के लिए, लोग भोजन करके चल रहे हैं आगे, नारे लगा रहे, बच्चे लोग जो है धोती कुर्ता पहनकर कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नाम को पुकार रहे हैं कि जमुना जी को लौट के लेके आओ। हम लोग तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो यहाँ हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए, उन लोगों का जो आध्यात्मिक बल है उसको पुष्टि करने के लिए यहाँ बैठकर हमको पुकारना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए क्या बड़ी बात है, वो तो नाचते हुए प्रेम से नाचते हुए वो कालिया का दमन किया था उन्होंने, कोई मेहनत नहीं किया था, ऐसा आनंद लेते हुए हाँ सब गोपियों को रिझाते हुए, देवताओं को अप्सराओं को यक्षों को किन्नरों को किम पुरुषों को सबको रिझाते हुए नृत्य किया था, बहुत सुंदर डांस किया था उन्होंने, और वो करते करते उन्होंने कालिया को नष्ट करके यमुना जी को शुद्ध किया था, कोई मेहनत की जरूरत नहीं उनको, वो केवल यही चाहते हैं कि मेरे भक्तों के अंदर ब्रज का प्रेम बढ़े, मेरे जितने संप्रदाय बन गए हैं वो सब एकत्र हो जाए, जो भक्त नहीं है वो भक्त बन जाए, जो अलग अलग जगह पर भजन कर रहे हैं वो सब लोग एक होकर यमुना जी के लिए अपना भावना प्रकट करें, ये उनकी लीला है। अगर आज यमुना जी अच्छी तरह बहती तो हम लोग मिलते गए यहाँ पर, नहीं मिलते ना, आज मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग सपनों अपनी यमुना जी के बारे में जो हमारा भाव है वो प्रकट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस, चाहे बॉम्बे में हो या दिल्ली में हो या मथुरा में हो या कहीं भी हो, हमारे हृदय का जो भाव का श्रद्धा का जो फूल है वो हम अर्पण करना चाहते हैं, यस वी लव यू माई लॉर्ड, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके यमुना जी पर प्रेम करते हैं, आपके गिरिराज गोवर्धन पर प्रेम करते हैं, ब्रज पर प्रेम करते हैं, आप पर प्रेम करते हैं, आपके नाम पर प्रेम करते हैं, हमें आपका धाम चाहिए, आप भी चाहिए, इसलिए यहाँ बैठकर अपनी भावनाओं का सुमन फूल जो है वो अर्पण करना चाहते हैं। तो इस सब के एक सब कष्ट के माध्यम से भगवान सभी भक्तों को एकत्र कर चुके हैं, कहीं नहीं ऐसा माहौल अभी खड़ा है, पुष्टि मार्गी निम्बार्की शिव संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय इस्कॉन हरे कृष्णा आम जनता मुसलमान क्रिश्चन सब लोग जुड़े हुए हैं, अभी चल रहे रास्ते पर, आप कहेंगे मुसलमान क्यों जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ लाइन है यमुना जी, अरे ब्रज में पानी नहीं आ रहा है वर्षा नहीं हो रही है तो क्या खाएंगे वो लोग, तो धर्म की एक बात है, एक पेट की दूसरी बात है, हाँ भौतिक जीवन की तीसरी बात है, सबके लिए यमुना जी जरूरी है, इस स्तर से उस स्तर तक, पेट भरने से लेकर कृष्ण प्रेम देने तक सब लोग जुड़े हुए हैं, कितनी अच्छी बात है, एक कार्य के लिए एकत्र होना कलयुग में बहुत मुश्किल है, तो कलयुग का लक्षण क्या है, कलह झगड़ा, झगड़ा होना बहुत आसान एकत्र होना बहुत मुश्किल, तो यमुना जी ने सबको मिला लिया, अभी जो महंत लोग महामंडलेश्वर जी लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं वो सब लोग एकत्र एक मंच पर आ गए हैं अभी यमुना जी के कार्य के लिए, और जरूर इसमें यश मिलेगा, अनंत संत लोगों ने त्याग किया है, तपस्या कर रहे हैं, वो अनशन का उपवास कर रहे हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं हमारे लिए कि हमारे यमुना जी लौट के आ जाए ब्रज में और हम सब लोग बड़े गर्व से दर्शन करने चले जाएं। तो आज अभी बहुत समय हमारे पास कम है, आज वो सब लोग लास्ट डे 10 तारीख रविवार के दिन अभी दिल्ली पहुंच गए हैं, अभी आज वहाँ पर क्या होगा ये सब आपकी प्रार्थना के ऊपर डिपेंड है, आप कैसी प्रार्थना करते हैं, रो रो के करते हैं, हृदय से करते हैं, पुकारते हैं भगवान को, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत नालायक चीज़ है, तो वो लाठी चार्ज करेगी इनके ऊपर, इनका अश्रु दूर छोड़ेगी, हाँ धमकाएगी उनको, बहकाएगी, कुछ चीटिंग करेगी, कुछ झूठा आश्वासन देगी तितर बितर करने के लिए, आंदोलन का जोर कम हो जाए इसलिए 2% पानी छोड़ देगी, फिर 2 दिन के बाद बंद कर देगी उसको, हम लोग खुश हो जाएंगे, अरे यमुना जी आ गई, हम लोग आंदोलन बंद कर देंगे, बाद में बंद कर देंगे उसको, ये गवर्नमेंट है। तो हम लोग यहाँ बैठकर अपने हृदय की भावना तीव्र रूप से हाँ आंसू बहाते हुए यहाँ बैठकर हम लोग अपनी भावना वहाँ भेजना चाहते हैं, जो लोग फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं उनका हमारा सपोर्ट है, इस भावना से हम लोग यहाँ पर भी कीर्तन करेंगे, क्योंकि कीर्तन सबसे बड़ी शक्ति है। बाकी धन की शक्ति, अनुयायियों की शक्ति और प्रॉपर्टी की शक्ति और पावर की शक्ति और इन्फ्लुएंस और कॉन्टैक्ट कुछ नहीं कर सकता है। नाम के बल पर हम भगवान को बहला सकते हैं, भगवान को वश कर सकते हैं, और कोई बात नहीं है भगवान को वश करने के लिए। हम भगवान को ये बताना चाहते हैं कि कृपा करके आप जमुना जी को दोबारा ब्रज में लौट के लेके आओ। हमारी मांग केवल सिंपल है कि ब्रज के जमुना जी के अंदर मलमूत्र डालना बंद करो, उसके लिए पैरेलल लाइन बनाओ। केवल 2500 करोड़ का खर्चा है उसके अंदर। अरे आज लोग घपला करते तो भी लाखों का घपला करते, घपला करना भी आजकल बहुत कम माना गया है। अगर वो 1 करोड़ का घपला करता है तो बहुत तुच्छ माना गया उसमें 1 करोड़ का घपला कोई करता ही नहीं आजकल। 1,65,000, 80 लाख करोड़, 1,65,000 करोड़, ऐसा घपला करते हैं आजकल। पता नहीं कहाँ कर जाते हैं, क्या कहाँ रखते हैं, वो क्या खाते हैं उसमें, आई डोंट अंडरस्टैंड कितना खा सकते हैं आदमी, लेकिन करते हैं। अपने अनंत पुश्तों के लिए व्यवस्था करने की मेहनत करते हैं वो। उनके लिए 2500 करोड़ का नाला बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये कह रहे हैं कि 100% हरियाणा को पॉलिटिशियन लोगों ने खींच लिया है पानी, 5% छोड़ो तो भी काफ़ी है, 5% से भी जमुना जी का गौरव लौट के आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, पैसे का बहुत उसमें मामला गड़बड़ है उसके अंदर। इसलिए गवर्नमेंट से विनती कर रहे हैं कि 5% हो, 10% हो पानी छोड़ेंगे तो ब्रज में जमुना जी दिखेगी कि बह रही है, स्वच्छ जल आएगा दोबारा, आचमन लायक, स्नान लायक, अभिषेक लायक। तो इसलिए आप लोगों को भी विनती मैं करता हूँ, बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी हृदय की भावनाओं को बटोरो और ये समझने का प्रयास करो कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम चाहते हैं कि जमुना जी लौट के आए, क्योंकि हम ब्रज पर श्रद्धा रखते हैं, भगवान पर प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इसलिए आप लोगों को अभी विनती है कि हम लोग केवल 30 मिनट के लिए, पहले भी लंबा प्लान था लेकिन 30 मिनट के लिए हम लोग इसमें अभी भगवान के नाम का एकाग्र होकर, एक चित्त होकर पुकारेंगे। हाँ, ऐसे यहाँ वहाँ देखते हुए कीर्तन नहीं करेंगे, एक चित्त होकर, एकाग्र होकर, ध्यानपूर्वक भगवान के नाम को पुकारेंगे और हर एक नाम के साथ में भगवान को पुकारेंगे और कहेंगे कि आप कृपा करके जो आंदोलन करता है, जो भक्त लोग, संत लोग वहाँ एकत्र हुए हैं, उनको कोई कष्ट न हो, उनके भावनाओं के प्रति भगवान आप उनको रिस्पॉन्स दे दें और दोबारा जमुना जी परमानेंटली, कुछ दिन के लिए नहीं, परमानेंटली लौट के आए ब्रज में और हम सब लोग जाके दर्शन करें उनका और हमारी जो प्रेम की भावनाएं हैं वहाँ प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम।